Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा. शिशिर, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार.
The headlines: benchmark domestic equity indices shrug off geopolitical jitters, Sensex gains over 670 points, Nifty closes above 24,900. India's WPI inflation eases to 14-month low of 0.39% in May, and global crude oil prices fall over 1%, Brent crude trading at $73.49 per barrel.
भू राजनीतिक तनावों के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में आई मजबूती. सेंसेक्स ने 670 अंकों से अधिक की छलांग लगाई. निफ्टी 24,900 के ऊपर हुआ बंद. भारत की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में कम होकर 14 महीने के न्यूनतम स्तर 0.39% पर आ गई. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 1% से अधिक टूटी. ब्रेंट क्रूड $73.49 प्रति बैरल पर कर रहा था कारोबार. शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से. घरेलू बाजारों में आज दो दिन से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया और प्रमुख सूचकांक फिर तेजी के साथ बंद हुए. भू राजनीतिक स्थिति में संकट के बावजूद सभी क्षेत्रों में हुई खरीदारी के बल पर दोनों प्रमुख सूचकांक तेजी पर बंद हुए. 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.84% की बढ़त से 678 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 81,796 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.92% की तेजी से 228 अंक बढ़कर 24,947 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार में भी आज तेजी का माहौल था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.9% से अधिक बढ़ गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई.
The benchmark domestic equity indices rebounded today, snapping the two-day losing streak. Both indices edged up fuel by buying across all sectors, offsetting geopolitical jitters. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 678 points or 0.84% to close at 81,796. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 228 points or 0.92% to settle at 24,947. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in positive territory. The mid-cap index advanced over 0.9% and the small-cap index increased more than 0.3%. In the Sensex pack, 27 out of 30 companies edged up. Among the top gainers were Ultratech Cement, which rose almost 2.4%, Tech Mahindra, increased more than 2.1% and HCL Tech added over 1.6%. In the top laggards, Tata Motor shed more than 3.5%, Adani Ports lost 0.35% and Sun Pharma fell almost 0.2%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, all 21 sectors closed in the positive territory. In the top gainers, IT as well as focused IT both climbed 1.5% each. Tech advanced over 1.3%. Realty along with oil and gas added more than 1.2% each. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,108 companies declined. Shares of 1,976 companies advanced while the shares of 169 companies remained unchanged at the National Stock Exchange. 66 companies hit their 52-week high while 27 hit their 52-week low.
And now we are with our first speaker today, from Delhi, Virendra Kumar. Virendra Kumar ji, aapka bahut bahut swagat Market Mantra mein. Sawal puche.
मैम, आप सभी प्रतिनिधियों को पहले तो मेरा नमस्कार
जी. नमस्कार
मैडम, मुझे ये जानकारी चाहिए, जैसे किसी कंपनी का शेयर है, कोई भी ए और बी दो कंपनियां हैं, तो कंपनी ए का जो मार्केट कैप है वो है 50,000 करोड़ और बी का है 10,000 करोड़ मार्केट कैपिटल, तो कौन सी कंपनी स्ट्रांग मानी जाएगी, कौन सी कंपनी बड़ी है, ये मतलब मार्केट कैपिटल तय करता है या उसमें कितनी बड़ी मशीनरी है, कितने एम्प्लॉई हैं, ये क्या इसका माना क्या होता है बड़ी कंपनी?
देखिए वीरेन जी, शेयर बाजार में करीबन 6,700 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं. इन कंपनियों को तीन श्रेणी में डाला गया है. एक जिनको हम लोग कहते हैं लार्ज कैप यानी कि बड़ी पूंजीकरण वाली, फिर मझोली है और फिर छोटी है. उसका आधार भी तय किया गया है कि जो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से पहली 100 कंपनियां होंगी वो लार्ज कैप है, 101 से 250 तक जो पायदान पर है वो मझोली है और 250 के बाद जो है वो छोटी है. अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से कहूं तो 20,000 करोड़ या उससे ऊपर का है वो लार्ज कैप है, और फिर 20,000 करोड़ से कम या 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो मिड कैप है, और 5,000 करोड़ रुपए से कम जिसका मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप है. अब आपका जो प्रश्न था कि जो लार्ज कैप है वो मजबूत कंपनियां हैं, निश्चित तौर पर जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में इंक्लूड की गई हैं, और उनका बाजार पूंजीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में कितने शेयर खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और साथ ही साथ उनकी कीमतों में किस तरीके से उतार चढ़ाव है. तो शेयर बाजार के नजरिए से महत्वपूर्ण यह है कि उनका बाजार पूंजीकरण कितना है.
Our next caller is Mangesh from Maharashtra. Mangesh.
हेलो, महाराष्ट्र अकोला से मंगेश राउत बोल रहा हूँ.
हाँ मंगेश जी.
सर मेरा क्वेश्चन ETF के बारे में था.
सबसे पहले आप अपना रेडियो सेट थोड़ा वॉल्यूम उसका कम कर लें या बंद कर लें, आवाज इको हो रहा है.
हाँ
मंगेश जी, रेडियो सेट अपने बंद कर.
हमारी आवाज?
हाँ बताएं.
ETF के बारे में पूछना था सर, ETF कैसे इन्वेस्ट करें और उसके चार्जेस ये अच्छा है या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि ETF में, उसके बारे में जानना है.
मंगेश जी देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF जिसको हम लोग कहते हैं वो थोड़े से जिसको कहते हैं ना कि परिपक्व निवेशक जो है वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है. आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो जो कोई सेक्टोरल या फिर जैसे इक्विटी है, मतलब जिसको जिसका पैसा शेयरों में कम से कम 65% लगता है, उनमें अगर आप पैसा लगाएं तो बेहतर है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में थोड़े समय के बाद जब आपको बाजार थोड़ी बेहतर समझ में आने लगे तब आपको वहां पर पैसा लगाना चाहिए. और जहां तक चार्जेस के सवाल हैं, वो चार्जेस कैसे अलग नहीं होते हैं और ना ही आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए.
और अब करेंसी बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली बढ़त के साथ 86.06 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 97.92 पर था. रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का तो अधिकांश प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1.8% का उछाल आया. जापान के निकेई 2025 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज हुई. हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.7% बढ़ गया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.35% की वृद्धि दर्ज हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक हालांकि आज लगभग स्थिर रहा. यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में यहां के बाजारों में बढ़त का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.7% से अधिक की बढ़त थी। लंदन के फुटसी 100 में 0.4% से अधिक वृद्धि चल रही थी और जर्मनी का डैक्स 0.37% की तेजी पर था। शिशिर, क्या कहेंगे आप, अगर हम भारतीय शेयर बाजार को देखें, बाकी एशियाई बाजारों को भी देखें, यूरोपीय बाजारों में जो अभी रुख है सभी पॉजिटिव है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी जियोपॉलिटिकल संकट चल रहा है और अभी जो टैरिफ्स को लेकर भी कोई अभी सर्टेंटी नहीं है, सो आपको लगता है कि बाजारों में एक तरह से रेजिलियंस आ चुकी है? कैसे देखते हैं आप आज के प्रदर्शन को?
दो बातें हैं यहाँ पर। अगर आप बीते सप्ताह देखें, जिस तरीके से व्यापार समझौते पे थोड़ी प्रगति देखने को मिली है, उसको शेयर बाजार ने सकारात्मक नजरिए से लिया है। लेकिन बाजार की परेशानी यह है कि क्षण क्षण में वैश्विक घटनाक्रम बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के बीच में जो स्थिति बन गई है, अब ये पिछले 4 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। किसी एक दिन किसी एक का पलड़ा भारी होता है, किसी दूसरे दिन दूसरे का होता है। तो ऐसी स्थिति में शेयर बाजार कोई निश्चित दिशा नहीं ले पा रहा है। एक जिसको कहते हैं ना कि उस क्षण में कौन सी ऐसी चीज है, उसके आधार पर व्यापार किए जा रहे हैं, सौदे किए जा रहे हैं और उसका असर आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। आज जो आप देखेंगे कि अगर पिछले 2 दिनों में जो हमने तेज एक गिरावट पिछले सप्ताह हमने देखी, उसके बाद एक खरीदारी का मौका था जिसका इस्तेमाल आज किया गया है। लेकिन अनिश्चितता बाजार में बहुत ज्यादा है और ऐसे में हमारे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए शेयर बाजार से अभी दूर रहना बेहतर है। बेहतर ये भी होगा कि अगर बहुत तेजी से नीचे आ रहा है तो खरीदारी का कोई मौका बन रहा है तो खरीदारी कर लें, लेकिन ऊंचे भाव पर निवेश करने से बचे। और ज्यादा बेहतर तो यह है कि शेयर बाजार से भी थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, म्यूचुअल फंड में SIP या ऐसे साधनों के जरिए निवेश करें, वो बेहतर होगा।
नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर, वेलकम।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरा सवाल है कि अभी ईरान और इसराइल का वॉर होने के बावजूद भी आज मार्केट में छलांग लगाई, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिटेबल शेयर है मोर देन 10% 20% प्रॉफिट में जो है वो निकालना उचित रहेगा क्या? ये मेरा सवाल है। और आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना उचित?
रत्नाकर जी, हमेशा से इस बात को आप ध्यान में रखिए, जैसा आपने कहा कि अगर 10 से 12% का आपको मुनाफा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो किस्तों में मुनाफा कमाइए। देखिए, मूल को आप बचा करके रखिए और मूल के ऊपर जो आपका बन रहा है उसको आप निकालने की कोशिश करिए, और या फिर आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा किसी एक शेयर में आप पैसा लगा सकते हैं। तो एक बार में पूरा का पूरा निवेश बाहर मत निकालिए, थोड़ा बहुत जो किस्त बन सकता है, जैसे आप अपने किस्तों में कर्ज अदा करते हैं, किस्तों में जमा करते हैं जिसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो मुनाफा वसूली में भी किस्तों का जो है वो फॉर्मूला अपनाइए, फायदे में रहिएगा।
और एक और उनका प्रश्न था कि फ्यूचर में कौन से
वो तकनीक जो अलग अलग क्षेत्र की बात है, इस समय में फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो वित्तीय सेवाओं के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, उनमें एक स्थिति अच्छी बन रही है। हालांकि आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जब ब्याज दरें घट रही हैं उनकी कमाई पर असर पड़ने वाला है तो कैसे उन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं। दरअसल बाजार उनका बढ़ने का उम्मीद है, खासतौर पर जब ब्याज दरें नीचे आ रही हैं तो कर्ज की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है और इससे बैंकों के लिए जो आमदनी का रास्ता है वो बेहतर हो सकता है। तो एक फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा और दूसरा हम कहेंगे कि FMCG पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर रूरल एरिया में हम देख रहे हैं और अर्बन एरिया में दोनों जगह पर एक विकास हमको देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
और अब मुंबई से वापस दिल्ली आते हैं, संजीव है हमारे अगले कॉलर, स्वागत है, सवाल पूछे।
हाँ नमस्कार, मेरा टीम मार्केट मंत्रा एंड द एक्सपर्ट मिस्टर शिशिर सिन्हा।
नमस्कार।
आप मार्केट मंत्रा में 2 क्रूड के रेट्स देते हैं, एक तो WTI और एक ब्रेंट क्रूड। इसमें से हम जो इंडिया जो क्रूड इंपोर्ट करता है वो कौन सा होता है और इन दोनों में फर्क क्या है और किस तरह से इनकी बाइंग की प्राइसिंग सेटल होती है फॉर द इम्पोर्ट पर्पजेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? थैंक यू।
संजीव जी, सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो कुछ भी कच्चा तेल हम खरीदते हैं वो हमारा इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड होता है, जिसमें हमारा 3/4 आप कह लीजिए कि गल्फ और उन कंट्रीज का, और 1/4 जो है वो अदर सोर्सेस का है। तो हमारा क्रूड ब्रेंट या WTI अकेले नहीं होता है, बल्कि कॉम्बिनेशन होता है इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड। दूसरी चीज, सरकार कच्चा तेल नहीं खरीदती है, बल्कि तेल कंपनियां कच्चा तेल खरीदती हैं। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कच्चे तेल की कीमत के आधार पर तय नहीं होती हैं, बल्कि उसके लिए इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग मैकेनिज्म अपनाया जाता है। ये थोड़ा एक तकनीकी विषय है, लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूं सरल में समझाने का कि अगर आप पेट्रोल आयात करें, उसके आयात करने के समय में, बंदरगाह पर आने के समय में उसकी जो कीमत बनेगी वो हमारा आधार कीमत हो जाता है घरेलू बाजार के लिए, और फिर उसमें जो अलग अलग टैक्स हैं जो केंद्र सरकार के, जिसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जिसमें चार कंपोनेंट होते हैं, और जो राज्य सरकारों की हैं जिसको हम लोग सेल्स टैक्स या वैट के नाम से जानते हैं, उस सबको जोड़ करके और प्लस डीलर कमीशन जोड़ करके वो आपकी खुदरा कीमत बनती है। तो जैसे आप 94 रुपया 95 रुपया, अगर दिल्ली में आप हैं 95 रुपया लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अभी चल रही है, तो उसमें बेस प्राइस आप देखेंगे लगभग 54-55 रुपये का होगा, और बाकी जो है वो आपका टैक्स है जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और इसके अलावा फ्रेट के कुछ चार्जेस यानी कि ढुलाई का आपसे 20 पैसा या 25 पैसे प्रति लीटर का बनता है, और डीलर कमीशन होता है। तो ये एक पूरी व्यवस्था है, थोड़ी तकनीकी है, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको इसको समझाने की।
राइट, एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिस्क्राइब द इंडिया साइप्रस पार्टनरशिप एज वन फर्मली रूटेड इन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड द रूल ऑफ लॉ। मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग मीडिया विद साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स at the presidential palace in Nicosia today following a delegation level talks. During the delegation level talks, the two leaders held wide-ranging discussions covering the full spectrum of India-Cyprus relations. The two leaders agreed on the transformative potential of the India-Middle East-Europe economic corridor, calling it a project that can boost regional peace and prosperity. Both sides also expressed readiness to support the conclusion of the EU-India Free Trade Agreement by the end of this year, recognizing its significant economic and strategic potential. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has embarked on a visit to Kananaskis, Canada, this evening after successfully concluding his visit to Cyprus. During the two-day visit, at the invitation of Canadian Prime Minister Mark Carney, Mr. Modi will participate in the G7 summit and also hold bilateral meetings.
और अब कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स जो आज रिलीज हुई हैं उन पर नजर डालते हैं। भारत की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में वार्षिक आधार पर 0.39% पर आ गई, जो 14 महीने का न्यूनतम स्तर है। अप्रैल में यह दर 0.85% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अप्रैल के 2.55% के मुकाबले कम होकर मई में 1.72% दर्ज हुई। प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में थोक मूल्यों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और मूल्यों में गिरावट की ये दर मई में और बढ़ गई। अप्रैल में आई 1.44% गिरावट के मुकाबले मई में प्राथमिक वस्तुओं के थोक मूल्यों में कमी का ये आंकड़ा 2.02% हो गया। ईंधन और बिजली क्षेत्र में भी मई के दौरान थोक कीमतों में 2.27% की गिरावट आई। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं में 60% से अधिक योगदान वाली विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी की थोक मुद्रास्फीति दर मई में कम होकर 2.04% दर्ज हुई। WPI थोक मूल्यों में बदलाव को दर्शाने वाला सूचकांक है। दूसरी ओर CPI वह सूचकांक है जो खुदरा कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। मई के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति भी कम होकर 2.82% दर्ज हुई थी। शिशिर, क्या कहेंगे आप, ये जो इन्फ्लेशन पर जो काबू लगता है आपको कि RBI ने अब बड़ी फॉर्मली पा लिया है, और हमने अभी देखा उनकी लास्ट जो पॉलिसी थी उसमें आधा प्रतिशत जो उन्होंने कटौती की रेपो दर में, वो भी क्या आप मानेंगे कि बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है? हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं पूरा पूरा ट्रांसमिट कर रहे हैं लेंडिंग रेट्स में, तो जैसा आप कह रहे थे कि इससे जो लोन बुक्स है वो बढ़ेंगी बैंक्स की और इससे पूरी इकोनॉमी को फायदा होने की उम्मीद है?
देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग मौद्रिक नीति समिति है वो खुदरा ब्याज दर को लेते, खुदरा महंगाई दर को लेती है, थोक महंगाई दर को नहीं लेती है। तो हमारे पास दोनों आंकड़े अब आते हैं, थोक महंगाई दर भी है और खुदरा महंगाई दर है। जो थोक महंगाई दर है वो उसको हम लोग एक तरीके से प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो उसका नीचे जाना ये शायद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसको उसके उत्पाद की सही सही कीमत नहीं मिल रही है या उसके मुनाफे में कमी आ सकती है। लेकिन खुदरा महंगाई दर का घटना हमारे आपके उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मौद्रिक नीति समिति को ब्याज दर घटाने में मदद मिलती है। अब मुद्दा यह है कि क्या रिजर्व बैंक ने जो पिछले कुछ समय तक, फरवरी के पहले तक अगर आप देखें, तो उन्होंने नीतिगत ब्याज दर में कोई कमी नहीं की थी। इस समय में महंगाई दर की जो स्थिति में सुधार हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह सप्लाई साइड है, आपूर्ति की बात है। आप सब्जियों को अगर आप देखेंगे तो सब्जियों की आपूर्ति बेहतर हुई, अनाज की बात करें वहां पर स्थिति बेहतर हुई। तो जब अगर आप सीपीआई बास्केट अगर आप देखते हैं उसमें 54% की हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की है, तो उसमें अगर उनकी कीमतों में कमी आती है और खुदरा महंगाई दर घटती है तो मौद्रिक नीति समिति के लिए ब्याज दर में कमी करना आसान हो जाता। यही वजह है कि 5 महीने में लगभग 1% की महंगाई दर में कमी की गई है। अब इसका सीधा सीधा असर क्या है? 2019 से एक व्यवस्था अपनाई गई है जिसको हम लोग कहते हैं EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक्स हैं जो खुदरा लोन देते हैं या MSME को लोन देते हैं वो रेपो रेट से लिंक्ड है, कि अगर रेपो रेट में कोई बदलाव होता है जो मौद्रिक नीति समिति करती है तो आपका जो ब्याज, हम आप जो ब्याज दे रहे हैं खुदरा ग्राहक होने के नाते या छोटी कंपनियां जो ब्याज अदा कर रही हैं उसमें वो कमी आ जाती है। तो अभी के समय में 5 महीने में ये हुआ है। अब 1% की कमी जब हो गई है तो वहां पर बैंकों के लिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो, उनके लिए कर्ज के ऊपर ब्याज दर घटाने का एक रास्ता खुल गया है। और हमको ये भी ध्यान में रखना है कि कर्ज की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी, अब उम्मीद यह है कि वो रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जमा पर भी कम ब्याज मिलेगा। तो हम कर्ज के सस्ता होने को लेकर के जितने खुश हो जाएं, हम इस बात को ना भूलें कि जमा पर भी हमको ब्याज दर कम
मिलेगा। पर उससे भी जस्ट वन एक एस्पेक्ट ये भी निकलता है कि अगर जमा पर कम ब्याज दर मिलेगी तो हम ज्यादा प्रेरित होंगे स्पेंड करने की तरफ।
देखिए, आप अगर संख्या के हिसाब से देखिए, बैंकों के पास लगभग 240 करोड़ बैंक खाते, जमा खाते हैं और कर्ज के खाते 44 करोड़ हैं। तो आप अंतर देखिए कितना ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि जमा पर जब ब्याज दरें कम होंगी तो हम ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ सकती है। और मकसद ही यही है कि उपभोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम दो चक्र देखते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं दुष्चक्र और एक कहते हैं सुचक्र। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो एक VCS साइकिल होता है, एक वर्चुअस साइकिल होता है। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आपको सुचक्र की जरूरत होती है। जब आज आप बात करें कि हमें 6.5, 6.6, 6.8% की दर से विकास करनी है तो आपको सुचक्र चाहिए। सुचक्र कैसे काम करता है? अगर बाजार में मांग होगी तो कंपनियां उत्पादन करेंगी, कंपनियां उत्पादन करेंगी तो रोजगार के नए मौके बनेंगे, रोजगार के नए मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, तो ये पूरा एक साइकिल चलेगा। तो ये साइकिल जो रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं और दूसरा जैसा जमा पे हम जिस पे कह रहे हैं कि ब्याज दरें कम हो गई हैं, तो लोगों के लिए एक रास्ता है खर्च करने का। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि खर्च काफी बढ़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
You are tuned in to our special program, Market Mantra, and listeners, you can call in on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464, and do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi.
और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, बस बहुत आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, इनपुट प्राइसेस कम होने का भी एक फायदा मिलता है और उससे भी
बिल्कुल देखिए, जैसे आपूर्ति बढ़ी तो आपूर्ति बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है उसकी कीमत कम होगी। अगर साग सब्जियों में अगर आप देखें, मैं देखिए महंगाई दर में टॉप लिया जाता है, टॉप यानी कि टोमेटो ओनियन पोटैटो। तो टोमेटो ओनियन पोटैटो में अगर आप देखेंगे तो टमाटर थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन आलू और प्याज सस्ते हुए हैं, बाकी सब्जियां भी सस्ती हुई हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल आइटम्स हैं, उनके दाम घटे हैं और उसी का असर आपको थोक जो महंगाई दर है उसमें कमी दिख रही है।
कुछ और भी आंकड़े आए हैं। भारत का मर्चेंडाइज यानी वस्तुओं का व्यापार घाटा अप्रैल के 26.42 अरब डॉलर के मुकाबले कम होकर मई में 21.88 अरब डॉलर दर्ज हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में मजबूती का संकेत मिलता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मर्चेंडाइज का आयात मई में 1.7% कम होकर 60.61 अरब डॉलर दर्ज हुआ। इसी दौरान मर्चेंडाइज का निर्यात भी 2.17% कम होकर 38.73 अरब डॉलर हो गया। वार्षिक आधार पर भी देखें तो मई 2024 के 22.09 अरब डॉलर के व्यापार घाटे की तुलना में इस वर्ष मई में व्यापार घाटे में कमी दर्ज हुई। सो व्यापार घाटे में कमी दर्ज होना निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है।
इसमें एक आपने तथ्य गौर किया कि जितना आयात में कमी हुई है उससे ज्यादा कमी हमारे निर्यात में हुई है। अगर आयात में कमी 1% से कुछ ज्यादा की है तो निर्यात में 2% से ज्यादा की कमी है। और अमूमन इस समय में हमने देखा है कि ये जो महीना होता है अप्रैल मई का, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाते का घाटा है वो कम होगा और ये रुपए के लिए अच्छी खबर होगी। जैसा कि आंकड़े भी बता रहे हैं कि रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, उनका उसके लिए एक वजह जो है ये जो हमारा व्यापार घाटा उसका कम होना भी है।
And on to some other news, labor force participation rate, that is LFPR in current weekly status CWS among persons of age 15 years and above decreased to 54.8% in May as compared to 55.6% in April 2025. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, monthly labor force and unemployment data, LFPR in rural areas was 56.9% and LFPR in urban areas was 50.4% for persons of the same age group during last month. Meanwhile, India's unemployment rate in CWS increased to 5.6% from 5.1% in April for individuals aged 15 years and above. The unemployment rate for female was higher at 5.8% compared to the male. You are off 5.6%. Shishir, your quick comments on this.
Unemployment rate?
Yes.
Unemployment rate has gone up slightly because of the female joblessness rate has slightly gone up. And that could be one region, especially in the rural area where we are saying that the female unemployment rate has gone up, which is impacting the overall unemployment rate.
All right, moving on to crude now. Crude oil prices edged down today as renewed military strikes by Israel and Iran over the weekend left oil production and export facilities unaffected. Brent crude was trading 1% down at $73.49 per barrel. WTI crude was also trading 1.1% down at $72.18 per barrel when reports last came in. Shishirji, looking at the geopolitical tensions that we are witnessing over the past few days, especially in West Asia, where do you see this oil price going on from here?
It's not a good sign. I mean, going by the tension, and we have seen that just within last 4 to 5 days, the oil prices have boiled up. And if the supply is affected, I mean, at this moment, at least for next some time, we are not going to face any problem in terms of the supply. But if this continue for a long period, then there may be some issue in terms of supply and then the price may go up. In fact, one of the analysts has written that the price could surge to as high as $150 per barrel. I mean, God forbid it should not happen, but we should not discount this factor. So that is one problem we have to keep in mind.
Bharat ke liye to bahut hi ye ek important mudda hai. Let's hope aisa na ho. और अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर, जहां सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.53% गिरकर 99,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.26% बढ़कर 1,07,200 200 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.45% गिरकर 99,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं जुलाई में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.42% बढ़कर 1,06,935 रुपए प्रति किलो पर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर आने के लिए और बहुमूल्य जानकारी के लिए।
एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स श्रग ऑफ, जियोपॉलिटिकल जिटर, सेंसेक्स गेन्स ओवर 670 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस अबव 24,900, इंडियाज डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन ईजेस टू 14 मंथ लो ऑफ 0.39% इन मे, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल ओवर 1%, ब्रेंट क्रूड ट्रेडिंग एट $73.49 पर बैरल। दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फ्रॉम द एंटायर टीम हियर, गुडबाय। Market Mantra.